हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयम् नदाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयः तत्थाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्केन या कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदं तथाकरहो न परः। करारविन्दे न परारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधरुणबिम्बफल धरोष्ठा। पुण्येन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मावरुणः
स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे सांगपत् कमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्
श्रीमद्भागवतम् पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 2। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं,
यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः।
शब्दात् यावतः कृतवान् प्रश्नान्, यावत मतलब वह सब कृतवान् उसने किए, किसने? विदुर जी ने। जैसे हमने कल विदुर जी के विषय में पढ़ा था कि विदुर जी कौन थे, साक्षात यमराज। यमराज का मतलब होता है सुप्रीम कंट्रोलर। तो उन्हीं यमराज के यह अवतार थे जो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए इस संसार में आए थे। और जब उनको भगवान के इस संसार से जाने की विषय में पता चला तो फिर उद्धव ने उन्हें कहा कि मैत्रेय ऋषि से जाकर आप वो सब ज्ञान प्राप्त करो जो कि भगवान ने हमें दिया है। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास आए और मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न किए। यावतः कृतवान् प्रश्नान्, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। क्षत्ता कौशारवाग्रता, क्षत्ता कहते हैं विदुर जी का नाम है ये, और कौशारवा ये मैत्रेय जी का नाम है। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न किए और वो प्रश्न जैसे ही उन्होंने किए तो मैत्रेय मुनि उनका उत्तर देने लगे। और अब बहुत सारे प्रश्न किए थे परंतु बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं सुने, मतलब 4-5 प्रश्नों के उत्तर सुने। और सुनते ही क्या हुआ, जातैक भक्ति गोविंदे, जातैक यानी कि बहुत ही तीव्र। एक भक्ति का मतलब होता है एक भक्ति, यानी ऐसी भक्ति जो अनन्य है, जो कि केवल कृष्ण के अंदर दृढ़ भक्ति जो होती है ना, अनन्य भक्ति, उसको बोलते हैं जातैक भक्ति गोविंदे। केवल कृष्ण के, भगवान कृष्ण के श्री चरणों में दिव्य प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई। भक्त तो वो पहले से ही थे परंतु जब मैत्रेय मुनि के साथ
उनका संवाद हुआ तब उनकी भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंच गई और भगवान के विषय में, भगवान के शब्द जो उन्होंने सुनाए, भगवान के प्रेम के विषय में जब उन्होंने बताया तब वो रोने लगे, सिसकने लगे और उनकी उत्कंठा इतनी बढ़ गई, एकनिष्ठ भक्ति इतनी तीव्रता को पहुंच गई, शुद्ध प्रेम उत्पन्न होने लगा हृदय में और वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। और उसके बाद तेभ्यस्या पर रामः, फिर तेभ्यस्या मतलब बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन अभी इतने ही प्रश्नों को सुने थे तो तेभ्यस् यानी अगले प्रश्नों के संबंध में तथा अपरामः विराम ले लिया, बस अब नहीं सुनना है, अब मैं और नहीं सुन सकता। हैरत की बात है कि उन्होंने स्वयं ही प्रश्न पूछे थे और जब मैत्रेय मुनि उनके उत्तर दे रहे थे तो वो कहते कि बस अभी मुझे नहीं सुनना है, परंतु क्यों नहीं सुन रहे थे? क्योंकि जाता ही कब भक्तिर गोविंदे, कृष्ण के अंदर भक्ति इतनी तीव्रता से उमड़ गई थी, उनके हृदय में इतना कृष्ण के लिए विरह भाव हो गया था, इतने रो रहे थे, सिसक रहे थे, अब जो रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, वो भगवान के प्रेम में इतना मदमस्त पागल हो गए, अब वो क्या कथा सुनेंगे, सुनने के योग्य ही नहीं रहे वास्तव में अब वो। इसलिए उन्होंने मैत्रेय मुनि को कहा कि अब बस, अब मैं नहीं सुनना चाहता या मैं नहीं सुन सकता। वास्तव में भक्तों बहुत सारी फालतू चीजें श्रवण नहीं करनी चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि कहीं भी कोई भी जो कुछ भी कह रहा है वो सब हमें नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कथा कर रहा होता है तो सब लोग परम श्रद्धा से सुन रहे होते हैं। इवन यहाँ तक कि महात्माओं का तो क्या कहना, कोई निराकार बता रहा है, कोई देवता के विषय में बता रहा है, कोई किसी के विषय में बता रहा है, कोई किसी के विषय में बता रहा है, तो इतना परम संतोष के साथ, परम श्रद्धा के साथ सुन लेते हैं। कोई भी कुछ भी वर्णन करे बस सुन लेते हैं। तो ये इतनी सारी फिजूल बातें नहीं सुननी चाहिए। आजकल का मनुष्य इतना अविवेकी है कि वो डिसाइड भी नहीं करना कर पाता है कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो वास्तव में सुनने योग्य है या नहीं। वास्तव में हमें सुनने के समय अपनी बुद्धि को बहुत ही तीव्रता से यूज करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वास्तव में वो सत्संग है या कुसंग है। आजकल तो सत्संग के नाम पर पता नहीं क्या क्या सुनाया जा रहा है। हीरो हीरोइन की स्टोरियां बता दी जाती हैं, फिल्मों के गाने बता दिए जाते हैं, लतीफे बता दिए जाते हैं और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। शास्त्र का श्लोक तो बताया ही नहीं जाता, भागवत कथा तो होती नहीं है, पता नहीं क्या कौन सी कथा है। और वो तो छलने वाले हैं, वो तो छल रहे हैं और बहुत ही मासूम बनकर हम सब बैठकर सुन रहे होते हैं। वास्तव में ये हमारी अपनी गलती है, भगवान ने बुद्धि दी है, मनुष्य बनाया है, तो हमें अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए कि हमें किस प्रकार की कथा किस प्रकार के व्यक्ति से सुनना चाहिए, क्या वो व्यक्ति इस योग्य है कि वो कथा करें, या वो क्या वो जो शब्द अपने मुख से निकाल रहा है क्या वो इस योग्य है कि उनको सुनकर हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। तो वास्तव में अगर कोई एज इट इज हमें ये जो ऑलरेडी श्री प्रभुपाद जी ने भागवतम दे दिया है, भगवत गीता में प्रपट दे दिया है, ऑलरेडी जो हमारे पास हमारे संतों का ये धरोहर है, ये सब केवल यही श्रवण करने मात्र योग्य है। क्या श्री प्रभुपाद जी के पास बुद्धि नहीं थी, अक्कल नहीं थी, उनको यहाँ पर हीरो हीरोइन की बातें और फिल्मों के गाने और स्टोरीज नहीं लिखनी चाहिए थी अगर वो आवश्यक होती तो? पता नहीं क्या क्या आज लोग अपने मन बुद्धि से प्रचार करते हैं। शास्त्र में श्रील प्रभुपाद जी ने पर्पट में हर चीज बता दी है, अब उसको एज इट इज पढ़ दो तो अच्छा। हम पढ़ते हैं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद। विविध प्रश्न पूछने के बाद
तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो चुकने के बाद विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर में मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद कर दिया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से संतुष्ट करते हैं। गो कहते हैं इंद्रियों को और विंद कहते हैं संतुष्ट करने वाला। हम सब गोदास हैं, अपनी इंद्रियों को स्वयं संतुष्ट करना चाहते हैं, परंतु जब तक हम गोविंद की शरण में नहीं जाते, जब तक गोविंद की एकांत भक्ति नहीं करते, तब तक संतुष्ट होना संभव नहीं है। तो जब मैत्रेय मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया कि जीवन का वास्तविक तत्व जो है वो क्या है, अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है, तो जो गोविंद है अर्थात अपने भक्तों को हर प्रकार से संतुष्ट करते हैं, बद्ध जीव अर्थात संसार का जीव भौतिकतावाद में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है किंतु उससे उसे संतोष नहीं होता, तब वह ज्ञान योग की विधि से तथा भौतिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है, किंतु यह उसे अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त करा। यदि उसे अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में लग जाता है और विविध परोपकारी तथा कर्मार्थ कार्य करने लगता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिलता। अतः ना तो सकाम कर्म और ना ही दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का नित्य सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, पहले तो जीव अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की नाकाम कोशिश करता है। जब वो समझ जाता है कि इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, तो फिर वो ज्ञान योग का सहारा लेता है और फिर ज्ञान योग में क्या करता है, वो अपने आप को भगवान बनाना चाहता है कि मैं भगवान से मिलकर एक हो जाऊंगा और आनंदित हो जाऊंगा, परंतु इस तरह से भी उसको वास्तविक संतोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जीव की वास्तविक स्थिति है जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जब तक वो भगवान की दासत्ता का स्वीकार नहीं करता है, तब तक वो अपने वास्तविक आनंद की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकता, उसको वास्तविक संतोष नहीं मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का नित्य सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदे वचाहम्। तो भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है, वेदों का वास्तविक मकसद, वेदों को जानने वाला, वेदों को मनाने वाला, वेदों का लक्ष्य केवल मैं हूँ। तो यदि कोई ज्ञान योग का आसरा लेता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता, तो हमें यही समझना चाहिए कि उसने तो कुछ समझा ही नहीं शास्त्रों से। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धि परक
जिज्ञासाओं द्वारा कर्म ज्ञान तथा योग के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धि यूज नहीं करनी चाहिए जीव को, क्योंकि बुद्धि के द्वारा तो ज्ञेय ही नहीं है। बुद्धि तो छोड़िए, वेदों के द्वारा भी ज्ञेय नहीं है भगवान। चार वेद है हमारे पास, और चारों वेद जब आप पढ़ लोगे ना, चौथे वेद का आखिरी पन्ना जब खोलोगे तो वहां पर लिखा होगा नैति नैति नैति। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्त। वेदों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वेद तो भगवान को समझ ही नहीं पाए। अदुर्लभम आत्मभक्त, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, एक अनिष्ठ भक्त हैं, जो भगवान की अनन्य भक्ति करते, भगवान से प्रेम करते, केवल उन्हीं के द्वारा भगवान किए हैं। तो फिर हमें यदि भगवान को समझना है, यदि भगवान की भक्ति करनी है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की रज में अभिषेक करना पड़ेगा, ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। और जब तक हम कृष्ण को शरणागत नहीं हो जाते हैं, तब तक आनंद संभव नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर राय दे रहे हैं कि मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए, और बुद्धि परक जिज्ञासाओं द्वारा कर्म ज्ञान तथा योग के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता है, उसे ना तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है, और न ही ऐसे व्यक्ति को जो अन्यों का गुरु हो ऐसा दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख ना कर सके, विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका था, उसे आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न था। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि वास्तव में जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं, उन सबको जानने के बाद आपका एक ही लक्ष्य है कि आप भगवान की भक्ति में तीव्रता से अपने हृदय को लगा सको। फिजूल के प्रश्न करके अपना और जो प्रश्न के उत्तर दे रहा है उसका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ऐसे करो जो आपको कृष्ण की ओर ले जाए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, देखो कितना हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते, क्या प्रश्न करते, कितने सुंदर प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी अपराध कर बैठते हैं, ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती करा रहा हूं। तो और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि एक जीव की मृत्यु आना तो स्वाभाविक है ना, तो जो मृत्यु जिसकी आने वाली है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए अपने उद्धार के लिए। वहां पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि जब भगवान यहाँ थे तब तो धर्म की रक्षा कर रहे थे, परंतु भगवान तो चले गए इस संसार में, अब धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान धर्म किसको सौंप के गए हैं? धर्म कितनी बड़ी पूंजी है, कितनी बड़ी मिल्कियत है, तो अब धर्म किसके हाथ में है? तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिससे आपका वास्तविक लाभ होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप प्रश्न करते रहो और वो उत्तर देने वाला आपको उत्तर देता रहे, लेकिन यदि आपके हृदय में कृष्ण की प्रेम की और भक्ति उत्पन्न नहीं होते हैं तो वो सब फिजूल है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि से जैसे ही विदुर जी ने प्रश्न करना शुरू किया तो वैसे ही क्या हो गया, जाता ही भक्ति गोविंद, कृष्ण के अंदर, कृष्ण के चरणों के अंदर उसकी एकमात्र भक्ति उत्पन्न हो गई और उसे आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना, उसके अतिरिक्त और क्या है। एक हृदय में कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हो जाए, कृष्ण के नाम के बगैर अब और कुछ लेने का दिल ना करे, कृष्ण को देखे बगैर और कुछ देखने का जी ना करे, कृष्ण की कथाओं के अतिरिक्त और कुछ श्रवण न करने का दिल करे, कृष्ण को लगाए हुए भोग के अतिरिक्त और कुछ खाना ना चाहे जीव, केवल कृष्ण के विरह में तड़पता रहे, और भला क्या रह जाता है प्राप्त करने के लिए या श्रवण करने के लिए। और हमारा तो ये हाल है, कितनी कथाएं सुनते हैं, कितने लेक्चर सुनते हैं, और अभी भी भौतिक आसक्ति समाप्त ही नहीं हुई। वेल, इतना सुनने के बाद जैसे ही उनके हृदय में कृष्ण की असीम प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई, तो फिर उन्होंने तेभ्य शो पर राम बस और आगे श्रवण नहीं किया। और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे हमने कल पढ़ा, विदुरस्तीर्थ यात्राणाम मैत्रेयादात्मनोगति ज्ञात्वा गाधास्ति नापुर। जब आत्मगति यानी आत्मा की गति के विषय में जब उसे सब पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण प्रेम ही है, उतना पता चलने के बाद वो कहाँ गए, हस्तिनापुर में वो चले गए। और दयावाप्त विवेचिता, अब उन्हें और कुछ सुनना नहीं था, उनको जितना कुछ जानना था वो जान लिया। अब इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद, आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वो कहाँ गए, हस्तिनापुर में, वो जगह जहाँ पर उनका इतना अपमान हुआ था। 35 वर्षों से तीर्थों में घूमने वाला व्यक्ति आज फिर अपनी जन्मभूमि में आया है, और उस हस्तिनापुर का तो पूरा दृश्य ही बदल गया है, सब मर गए हैं, कुरुओं में कोई नहीं रहा, दुर्योधन नहीं रहा, दुशासन नहीं रहा, कर्ण कोई नहीं रहा, और द्रोणाचार्य भी नहीं रहे, केवल धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं अपने पुत्रों की शोक का मातम करते हुए, और 5 पांडव हैं। तो यहाँ पर अभी क्यों आए हैं, ऐसा प्रश्न होता है, यहाँ पर अभी आने की क्या आवश्यकता थी, जब उन्हें जाता ही का भक्ति गोविंद कृष्ण के लिए हृदय में एक अनिष्ट भक्ति उत्पन्न हो गई थी। तो वास्तव में अभी हमें सूत गोस्वामी बताएंगे कि उनके आने का वास्तविक कारण अपने ज्येष्ठ भाई का श्रेय करना था। वास्तव में भक्तों, धृतराष्ट्र जैसा भी था, पुत्र की तरह पालन किया था विदुर जी का। विदुर जी को हर वो सुख प्रदान करने का प्रयास किया था जो अपने भाई को अपने बच्चों को देते हैं। विदुर जो है वो अपने भाई का उपकार नहीं भुला पाए थे, वो अपने भाई का कल्याण करना चाहते थे। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र जी, क्योंकि धृतराष्ट्र के पूरा जो कुल था वो तो नाश हो गया था, और वो युधिष्ठिर के घर में रह रहे थे, तो यहाँ पर विदुर जी आए हैं अपने भाई को समझाने के लिए, बहुत ही सुंदर रीति से उनको ज्ञान देंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो वो आए हैं, तो हम देखते हैं कि जब वो अपने घर लौटे तो उनको किस तरह से स्वागत किया गया, कौन कौन कैसे कैसे मिले। सुत गोस्वामी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं, श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 3।
तम बंधु मा कथम दृष्ट्वा धर्म पुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पांडुर ज्ञातयः ससुता स्त्रियः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चौतरा कृपी अन्याश्च जामया पांडुर ज्ञातयः ससुता स्त्रियः तं बन्धुम् आगतम्। ये बहुत ही हमारा निकट का संबंधी है। वास्तव में विदुर जी बहुत प्यार करते थे सबसे,
और सब पांडव जो थे वो तो उनका बहुत ज्यादा उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे पांडव, क्योंकि पांडवों के जीवन अभी जीवित होने का एक कारण विदुर जी थे। वहां पर कौरवों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको मारने के लिए, परंतु विदुर ने सदैव उनकी सुरक्षा की थी। और जैसे ही धर्मपुत्र अर्थात धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि हमारे काका श्री विदुर जी आए हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए। इतना उनको दुख, मतलब उनके ना होने से बहुत दुख था, और आज उनको इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि काका श्री वापस आए। उनको देखते ही सहानुज अपने सारे अनुजों के साथ उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना भव्य स्वागत किया जैसे भगवान का किया जाता है। बहुत प्रसन्न हुए थे। और उसके साथ साथ धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूत, धृतराष्ट्र जी और उनके पुत्र हैं युयुत्सव, जो एक वैश्य पत्नी से उनको उत्पन्न हुए थे। युयुत्स सिर्फ यही रह गए थे। और सूत यानी संजय, शारदवत अर्थात कृपाचार्य, और प्रथा यानी कुंती महारानी। उसके बाद गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण, गांधारी जी, द्रौपदी और सुभद्रा और उत्तरा जो उनकी बहू थी अभिमन्यु की पत्नी, और कृपी जो कृपाचार्य की सिस्टर थी द्रोणाचार्य की पत्नी, और अन्याश्च जामयः पांडुर अन्य, मतलब जितने भी दूसरे भी थे पांडु परिवार में, जामय मतलब अभी ज्यादातर तो पुरुष की मृत्यु हो गई थी, तो जितनी भी पत्नियां थी वे ज्ञातयः पारिवारिक सदस्य जितने भी थे वो सब ससुता अपने अपने पुत्रों सहित वो सारी स्त्रियां आई और उनका स्वागत करने लगी। तो ये सारा क्योंकि अपने परिवार का श्रेष्ठ एक व्यक्ति आया है, उसको देखकर अभी तो बहुत सारे जो पुत्र लेकर आई थी उन सारे पुत्रों को तो पता भी नहीं था कि काका श्री, मतलब उन्होंने कभी देखा नहीं था, अभी 35 साल से वो गए हुए थे। तो जैसे ही पता चला कि काका श्री विदुर आए हैं तो सब माताएं अपने बच्चों को बता रही, चलो उसको देखते, तो बच्चे पूछते कि ये कौन है, तो उनके विषय में बहुत सारी बातें बता रही थी, उनकी श्रेष्ठता की, उनके ज्ञान की बातें बता रही थी। कि बहुत सारे बच्चों ने तो उनको आज फर्स्ट टाइम देखा, और जो जिन्होंने पहले देखा था वो सब बहुत उत्सुक थे उनको देखने के लिए। वास्तव में ये कुरुवंश का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि विदुर जैसे व्यक्ति इस वंश में थे। तो सब जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा हृदय से उनसे मिले, बहुत ज्यादा हृदय से उनका स्वागत किया, आंखों से अश्रू बह रहे थे, रोमांच हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने आकर उनको प्रणाम किया अपने भाइयों के साथ, और विदुर जी ने उनको आलिंगन किया, धृतराष्ट्र जी और उनको विदुर जी ने प्रणाम किया, मतलब जो जिस योग्य था उसी प्रकार किसी ने अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब होता है वचन से नमस्कार करना, प्रणाम करना, और किसी ने दंडवत किया तो किसी ने आलिंगन किया। तो इस तरह से विदुर जी सबके साथ बहुत ही प्रेम के साथ मिले। अनुवाद देखिए, जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो सारे निवासी महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों सहित स्त्रियां सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। मतलब ऐसा उनको लग रहा था कि बहुत समय से हृदय में चेतना नहीं है, इतना प्रेम करते थे वो विदुर जी से। श्रील प्रभुपाद जी अब इन समस्त व्यक्तियों के विषय में हमें बताएंगे, उनके विषय में कि कौन कौन है। वास्तव में ये सब बहुत ही महान अभिव्यक्तियां हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण जीव नहीं है। भगवान के साथ मतलब लीला करने में उन्होंने सहयोग किया है, तो इनके विषय में जानने से हमारा कल्याण होता है, इनके विषय में श्रवण करने से हमारी बुद्धि इतनी पवित्र होती है कि हम भगवान को बहुत ही निकट से समझ सकते हैं, भगवान के अंदर हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। तो इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। पहले गांधारी के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये विश्व इतिहास की आदर्श सती महिला हैं, थी। ये गांधार के राजा, अब काबुल का कंधार, जो कंधार है वहां पर पहले उसको गांधार कहा जाता था, तो महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिवजी की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली। अब यहाँ पर ये सोच लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि शिवजी की आराधना करने से कि हरूभरू कोई भक्त पति मिलेगा। यहाँ पर शिवजी की आराधना की थी गांधारी ने, परंतु उनकी शादी धृतराष्ट्र से हुई। तो वास्तव में हमें कुछ भी प्राप्त करने की यदि इच्छा है तो भगवान से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान से यदि हम प्राप्त करेंगे या भगवान से विनय करेंगे तो अवश्य हमारा कल्याण ही होगा। ये बहुत ही सती स्त्री थी और उनको उन्होंने 100 पुत्रों की इच्छा की थी शिवजी से, इसलिए उनकी उनका विवाह जो है वो धृतराष्ट्र से हुआ था। यद्यपि वे जन्म अंध थे, मतलब वो अंधे थे शुरू से बाय बर्थ। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की पट्टियां बांध ली थी और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई थी। वे अपने समय की परम सुंदरी कन्या थी और समान रूप से स्त्री गुणों से भी युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थीं, और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थीं, किंतु पहले कुंती के पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। मतलब उसने सोचा था कि पहले मेरा बेटा पैदा होगा, क्योंकि ज्येष्ठ बेटा जो होता है ना उसको राज्य मिलता है। अब एक तो उसका पति अंधा था, उसको राज्य नहीं मिला, तो इसने सोचा अगर पहला मेरा बेटा पैदा होगा तो मुझे मेरे बेटे को राज्य मिलेगा। लेकिन बेटा भी पहले कुंती को युधिष्ठिर महाराज पैदा हो गए थे, तो उसको इतना गुस्सा आया। वो गर्भवती थी और उसने अपने गर्भ पर प्रहार कर दिया और फलस्वरूप मांस का एक लोथड़ा गर्भ से बाहर आ गया। लेकिन चूंकि वे व्यासदेव की भक्तन थी, अतएव व्यासदेव की आज्ञा से यह लोथड़ा 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और उनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्र की माता बनने की उनकी साध पूरी हुई और वे उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक एक बच्चा 100 पुत्र एक एक करके उन्होंने उत्पन्न नहीं किए थे, एक ही बार में उन्होंने अपने घर पर प्रहार किया था और मांस का एक बहुत बड़ा पिंड उनके कोख से निकला था और उसके व्यासदेव जी ने आज्ञा दी थी कि इसके 100 पीस कर दो, और इस तरह से एक एक पीस में से एक एक बच्चा निकला था। और सबसे पहला जो बच्चा निकला था वो दुर्योधन था, उसके बाद दुशासन था। तो इस तरह से 100 उनके बच्चे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कार से उन्होंने गांधारी ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में ना थी, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया था। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडव पुत्रों तथा उनके पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र में उनके सारे पुत्र मारे गए तो वे अत्यंत ही खिन्न हुई और भीमसेन तथा युधिष्ठिर को श्राप देना चाहती थी, किंतु व्यासदेव ने रोक लिया। अभी ये भले ही
इसकी इच्छा थी कि राज्य मेरे पुत्रों को मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि पांडवों के साथ युद्ध हो। उनको और वो सत्वगुणी थी, शिव भक्तनी थी और वेद व्यास जी की भी भक्त थी, तो उनको ये पता था कि भगवान जिसके साथ है उसके साथ हम युद्ध में नहीं जीत सकते। इसलिए वो सदैव अपने पति से यही कहती थी कि आप ऐसा करो, राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दो, एक हिस्सा पांडवों को दो, एक कौरवों को दो, हम सुख से रहेंगे। लेकिन जब युद्ध हो गया और सारे उसके पुत्र भीमसेन ने बहुत ही भयानक तरीके से भीमसेन ने सबका वध किया, दुशासन की छाती का लहू पिया और दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, तो उसको बहुत दुख हुआ था। वो श्राप देना चाहती थी भीमसेन को, परंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत ही करुणिक था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे करुण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से करुण की पत्नी का विलापना बतलाया। जब उन्होंने अपने मृत पुत्रों को देखा तो फिर उन्हें स्वर्ग धाम जाते हुए देखा तो व्यास देव ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दावाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। तो ये थी गांधारी, जिनको बहुत दुख था अपने पुत्रों की मृत्यु का, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि वैसे तो तुम्हारे पुत्रों को कभी भी मुक्ति ना प्राप्त होती अगर ये युद्ध नहीं होता तो, और फिर ये युद्ध तो तुम्हारे पुत्रों के लिए मुक्ति का द्वार है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, और उन्होंने स्वयं भगवान ने उनको अपने पुत्रों को वैकुंठ जाते हुए दिखाया, तो फिर वो थोड़ी सी शांत हो गई थी। और उसके बाद जब अभी हम पढ़ेंगे विदुर महाराज, विदुर जी जब महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान देंगे उसके बाद ये पति पत्नी जंगल में चले जाएंगे और वहां पर इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद है प्रथा। प्रथा कुंती महारानी का नाम है और उनके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये महाराज शूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतएव वे कुंती कहलाई। वैसे तो वसुदेव जी के पिता शूरसेन दोनों यानी भाई बहन थे, लेकिन कुंती भोज जो थे वो शूरसेन के मित्र थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो फिर उन्होंने शूरसेन से कहा था कि आपकी जो भी संतान उत्पन्न होगी तो आप मुझे देना। तो उन्होंने कुंती महारानी जो पैदा हुई थी उनका पहले नाम प्रथा था, तो फिर जब कुंती भोज को दे दी थी फिर कुंती कहलाई। वे भगवान की विजय शक्ति की अवतार थी। जब स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज का महल देखने आए थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। वे परम योग ऋषि दुर्वासा की भी सेवा करती थी। दुर्वासा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया था जिससे वह मन मांछित देवता का आवाहन कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्य देव का आवाहन किया जिन्होंने उनके साथ संभोग करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सूर्य देव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस संभोग के कारण वे गर्भवती हो गए और उनसे करण ने जन्म लिया। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी हो गई और लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु करण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडवों को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडव ग्रस्त जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडव ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडव ने उनके अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गए। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब महाराज अल्प आयु में ही देवगंत हो गए तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती पांचो अल्प व्यस्क बालकों पांडवों के पालन के लिए जीवित रहेंगी और माद्री अपने पति के साथ सती हो जाएंगी। वहां पर उपस्थित शतसिंह तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया तो कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडम्बा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब वह कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसे स्वीकार करके पुत्र दान दे। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत ही व्यथित थे। बहुत मतलब एक राक्षस उनको बहुत डिस्टर्ब करता था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि पंचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पंचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया था। लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यास देव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याह गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडव से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कर्ण अपने धाम वापस जाने लगे तो उन्होंने जो प्रार्थना स्वीकार की वह सर्वोत्कृष्ट है। बाद में वे गांधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल में चली गईं। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तो ये थी कुंती महारानी, जो पांडवों की माता और भगवान की विजय शक्ति थी। उसके बाद श्री प्रभुपाद जी हमें द्रौपदी के विषय में बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये महाराज द्रौपदी की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी शची की अंशावतार थी। महाराज द्रौपदी ने मुनि यज की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, लेकिन द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी है। अतएव ये धृष्टद्युम्न की बहन है और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभित भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शैतानिक, तथा सहदेव से शुद्ध कर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदरी बताई जाती हैं। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने का के लिए हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य पांच पति मिले। जब इन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा, तो विश्व भर के देशों के राजकुमार तथा राजा आमंत्रित किए गए। ये पांडवों के वनवास के समय पांडवों के पांडवों से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रभूत दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गईं, तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे, वे भगवान श्री कृष्ण की परम भक्तिन थी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र जुटाकर अपमान से उन्हें बचाया। जब जटासुर ने उनका अपहरण किया, तो भीमसेन ने उसका वध कर दिया और उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे, तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध कराया और इस तरह वे बच गईं। जब अश्वत्थामा ने उनके पांच पुत्रों का वध कर दिया, तो वे अत्यंत ही शोकाकुल थी। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गई थी तथा मार्ग पर गिर गईं। युधिष्ठर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठर स्वर्ग पहुंचे, तो देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से ही विद्यमान थी। और अब श्री रूपा जी सुभद्रा के विषय में बता रहे हैं। सुभद्रा वे वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव को भी अत्यंत प्रिय थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं, और आज भी नित्य हजारों यात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत ही कारुणिक है, और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी की अनुभूति में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारिका में थे, तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका अपहरण कर ले। अतएव जब सारे लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे, तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का अपहरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें मार डालना चाहा, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन को क्षमा दान दे दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी हुई थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट हो गए। तो ये सब बहुत ही महान विभूतियां हैं जिनके कारण हमें आज यह महाभारत में भगवान इन सबको बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनके साथ लीलाएं की। सुभद्रा भगवान की बहन थी, द्रौपदी भगवान की सखी थी, कुंती भगवान की बुआ थी। तो ये सब बहुत ही महान विभूतियों के विषय में श्री प्रभुपाद जी ने बताया और इन सब ने बहुत ही सुंदर रीति से विदुर जी का स्वागत किया, जो कि हमें सूत गोस्वामी बता रहे हैं श्लोक नंबर 5 में। वे कहते हैं, प्रत्युच मोह प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादने प्रत्युच मोह प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादने प्रत्युच मुहु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादने प्रत्युच मुहु प्रहर्षेण। मतलब जैसे ही वो आए प्रति उजगमु, जैसे ही विदुर जी को देखा उन्होंने प्रहर्षेण, सब बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उनको कैसा लग रहा था? प्राणं तन्व इवागतम, जैसे जीवन प्राणं तन्व शरीर में इवागतम, जैसे कोई मूर्छित शरीर होता है जिसके अंदर चेतना नहीं होती है तो वो कैसे मूवमेंट नहीं करता है, ऐसा लगता है उसके अंदर प्राण नहीं है। लेकिन जैसे विदुर जी आए तो उनको ऐसा लगा जैसे उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ है, बहुत ज्यादा वो खुश हुए। अभिसंगम्य विधिवत, और उन सबने निकट जाकर विधिवत मतलब जिस योग्य था। अभी कोई छोटे थे तो उनके चरण विदुर जी के चरण छू रहे थे, कोई बड़े थे तो विदुर जी उनके चरण छू रहे थे, और युधिष्ठिर भीम नकुल वो सब जब चरण छू रहे थे तो विदुर जी उनको आलिंगन कर रहे थे, मतलब जिसका जैसा सम्मान करना चाहिए उस तरह सा। परिष्वंगाभिवादन है, परिष्वंगा मतलब कोई किसी को आलिंगन कर रहे थे तो किसी को आलिंगन प्रदान कर रहे थे, और इसी तरह अभिवादन सबको प्रणाम कर रहा था या सब एक दूसरे को ऐसे विधि से मिल रहे थे। अनुवाद, ये सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ है। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और आलिंगन सहित एक दूसरे का स्वागत किया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय होती हैं और जीव हर्षित होता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल से उनकी अनुपस्थिति से निष्क्रियता व्याप्त हो गई थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव उनके वापस आने पर सर्वत्र हर्ष छा गया। आगे सुत गोस्वामी कहते, तो उन सब ने जब वो सब विदुर जी से मिले तो उन सब की क्या स्थिति थी वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मुमुचु प्रेम भाष्पोघम विरहोत्कंठ्यकातरा राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिगृहम् मुमुचु प्रेम भाष्पोघम् विरहोत्कंठ्य कातरा राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिगृहम मोमुचुः प्रेम भाष्पोघम, प्रेम प्रेम मतलब प्रेम के भाष्प ओघम यानी भावुकता के अश्रु। जब उन्होंने इतने समय के बाद काका विदुर को देखा तो वो सब प्रेम के अश्रु उनके नेत्रों से बह रहे थे और विरहोत कंठ्य कातरा, क्योंकि बहुत वियोग था इसलिए वो बोल नहीं सक रहे थे, उनके कंठ अवरुद्ध हो रहे थे और बहुत उत्सुकता हो रही थी। थोड़ा सा उनको वो दुख भी याद आ रहा था कि कितने समय तक विदुर जी हमारे पास नहीं थे, तो उनको बहुत दुख भी हो रहा था, साथ साथ में प्रसन्नता भी हो रही थी कि वो आज आए हैं। और फिर राजा तमहर, राजा का मतलब है जो युधिष्ठिर महाराज हैं, तम मतलब उनको विदुर जी को अर्हयाम चक्रे प्रदान किया, क्या कृत किया गया आसनम, उनको आसन प्रदान किया बैठने के लिए। अभी तक वो क्योंकि आए थे बहुत थके हुए आए थे विदुर जी, कोई वाहन में बैठ के नहीं आए थे, एरोप्लेन में बैठ के नहीं आए थे, जैसे उनकी वहां पर मैत्रेय मुनि से प्रभास में मिले थे उसके बाद वो पैदल आए थे यहाँ पर, तो बहुत थके हुए थे। लेकिन सब लोग उनके मिलकर इतने ज्यादा भाव विभोर हो रहे थे, कोई आलिंगन कर रहा है, कोई चरण छू रहा है और कोई उनको देख हर्षित हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई अपना दुख प्रकट कर रहा है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे, और कोई खुशी प्रकट कर रहा था कि आप आ गए। तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया, जितनी शक्ति थी उनकी उसके हिसाब से उन्होंने उनका बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से प्रणाम किया, चरण जैसे भगवान का स्वागत किया जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठाया और प्रसाद का तो कहना ही क्या। परिग्रह मतलब बहुत ही सुंदर व्यवस्था की अनुवाद, चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम वश होकर चिल्ला पड़े। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तं भुक्तवन्तम् यानी कि फिर जो जो उनको प्रसाद खिलाया गया, भुक्तवन्तम् मतलब ठीक से भोजन उन्होंने किया, उसके बाद विश्रांतम् थोड़ा सा विश्राम किया, वो थके हुए थे तो उनको विश्राम कराने के बाद आसीनम सुखमासनम एक मतलब विश्राम विश्राम कर लिया उन्होंने, फिर आए एक रूम में आराम से आसीन, बहुत ही सुंदर अच्छा सा आसन दिया, बिठाया सुखम आसन है जिसके ऊपर वो सुख से बैठे। और आगे कहते हैं प्रश्रय वनंत, यानी ये राजा युधिष्ठिर के विषय में कहा गया, ये युधिष्ठिर महाराज की ये क्वालिटी थी, वो स्वभाव से ही बहुत ही भद्र थे, बहुत ही विनीत थे, विनम्रता थी। आज वो हस्तिनापुर के राजा हैं और एक वो महामंत्री जिनको उनके राज्य से निकाला गया है वो आज आए हैं, और उनसे वो कितना विनीत भाव से प्राह तेषां च शृण्वताम्, उन्होंने बहुत ही सुंदर भाव स्वभाव से उनसे प्राह मतलब कहा, और तेषां च शृण्वताम् जो सबको ही सुन रहे थे, बहुत ही कृतज्ञता उन्होंने विदुर जी की यहाँ पर बताई। आगे बताएंगे कि विदुर जी को बहुत कहा कि आपके कारण ही तो हम जीवित हैं, आपकी कृपा से आपके स्नेह से तो हमारा पोषण हुआ है, बहुत ही आगे अच्छे बताएंगे। अनुवाद देखिए, जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम भी कर चुके तो उन्होंने सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनते रहे, मतलब राजा उनसे बात कर रहे थे, ऐसा नहीं अपने रूम में जाकर, तेषां च शृण्वताम् सब सुन रहे थे वहां पर बैठे हुए थे सब। और वो श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का आलिंगन तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की, प्रिय मित्र या शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह से स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का क्या कहा जाए, जो परिवार भर के सदस्यों के शुभचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोला। तो क्या बोला वो हम कल पढ़ेंगे। महाराज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है कि घर पे जो भी अतिथि आता है उसका हमें अच्छे से स्वागत सत्कार करना चाहिए। इवन एक नरक ऐसा है, हम नरक के विषय में पढ़ रहे थे 28 नरक, तो जो घर में आए अतिथि का स्वागत नहीं करते ना, उसको भी एक नरक में डाला जाता है। क्योंकि अतिथि वास्तव में भगवान का स्वरूप होता है। और अतिथि का मतलब है कि अभी देखो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई हमारे घर पे आना हो पहले फोन किया करो, है ना। लेकिन अतिथि का मतलब है जो ऐसे ही आ जाए, जिसको है ना कोई तिथि नहीं होती है जिसकी, वो बस ऐसे ही आ जाए। और उसका साथ हम सब गृहस्थियों का यह कर्तव्य है कि हर एक अतिथि का बहुत ही सुंदर रीति से स्वागत करना चाहिए। उसको बैठने के लिए आसन देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, जल देना चाहिए, और उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए अगर वो शत्रु भी है तो भी वो भयभीत ना हो, उसके लगे कि नहीं मैं इसके घर पे आया हूं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा स्वागत कर रहा है, तो वो निर्भय हो जाए। तो ये हम सबके लिए श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत सुंदर शिक्षा दी है। आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।